नमस्कार भारत, 16 जुलाई मंगलवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। डेमोक्रेटिक महिला सांसदों पर टिप्पणी करने को लेकर घिरे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप।
As far as I'm concerned, if you hate our country, if you're not happy here, you can leave. And that's what I say all the time.
भारी बारिश से उत्तरी बिहार के अधिकतर इलाकों में बाढ़ का कहर।
हमारे जिले के 5 नदियां हैं, पांचों नदियों में नेपाल में वर्षा होने से अत्यधिक वर्षा होने के कारण जो है सो तूफान आई, हमारे पंचायत प्रभावित हुए हैं।
जानेंगे झारखंड में अदालत ने कुरान की प्रतियां दान करने को क्यों कहा।
ये अनोखा फैसला है, हमको लगता है हिंदुस्तान में फर्स्ट टाइम इस तरह का कोई दिया होगा। झंडा फैलाने वाले लोग हैं या जो लिख रहे हैं जाने अनजाने, उन पर भी असर पड़ेगा।
होंगी खेल की खबरें और अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। 4 डेमोक्रेटिक महिला सांसद जिन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश वापस लौट जाने के लिए कहा था, उन्होंने ट्रंप की टिप्पणी को नाकाम नीतियों से ध्यान भटकाने की नस्लवादी कोशिश बताया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 महिलाओं ने राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने की मांग की। इस बीच ट्रंप ने फिर से कहा कि ये महिलाएं अमरीका से नफरत करती हैं। वहीं डेमोक्रेटिक नेता हिलरी क्लिंटन ने कहा कि इन महिला सांसदों को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अमरीकी प्रवासी डिटेंशन कैंपों में हो रही अमानवीय व्यवहार की ओर सबका ध्यान दिलाया। अमरीका ने कहा है कि सेंट्रल अमरीकी प्रवासियों को अमरीका के बजाय मैक्सिको या रास्ते में पड़ने वाले किसी दूसरे सुरक्षित देश में शरण मांगनी चाहिए, लेकिन मैक्सिको ने अमरीका की इस घोषणा को खारिज कर दिया है। नियमों में बदलाव की घोषणा करते हुए अमरीका के अटॉर्नी जनरल विलियम बार ने कहा कि इससे आर्थिक प्रवासियों को शरण प्रणाली का गलत फायदा उठाने से रोका जा सकेगा, लेकिन मैक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेलो एब्राड ने कहा कि उनकी सरकार ने अब तक नई नीति पर चर्चा नहीं की है और किसी भी तरह के बदलाव को पहले मैक्सिको की संसद से मंजूरी मिलना जरूरी है। रविवार को ग्वाटेमाला के कोर्ट ने अमरीका और राष्ट्रपति जिमी मोरालेस के बीच हुए उस समझौते पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी जिसके तहत सेंट्रल अमरीकी देश को सुरक्षित तीसरा देश के तौर पर देखा जाता। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी ने इस नए और ज्यादा सख्त शरणार्थी नियम पर गहरी चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि ये नियम बुनियादी अधिकारों को सीमित करता है और अंतर्राष्ट्रीय इकरारनामे से भी मेल नहीं खाता। बीबीसी से बातचीत करते हुए मैक्सिको की एक शरणार्थी एजेंसी चलाने वाले एंड्रियो रमीरेस ने कहा,
Mexico's been very adamant and consistently has been refusing the third safe country.
मैक्सिको अड़ा हुआ है और तीसरा सुरक्षित देश बनने के विचार को लगातार ठुकरा रहा है और जिस तरह से ये बात कही गई ऐसा लग रहा है कि ये अमेरिका का एक पक्षीय फैसला होने वाला है, जबकि तीसरा सुरक्षित देश बनने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर होना जरूरी है और मैक्सिको की सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि वो इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। ये थे मैक्सिको की एक शरणार्थी एजेंसी चलाने वाले शख्स। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अल सल्वाडोर की एक महिला पर देश के सख्त गर्भपात विरोधी कानून के तहत हत्या का मुकदमा फिर चलाया जा रहा है। 2 साल पहले इवलिन हर्नांडेस को 30 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन दिसंबर में एक अपील के बाद उन्हें अस्थायी तौर पर रिहा कर दिया गया था। हर्नांडेस ने खुद को निर्दोष बताया है और कहा है कि किशोरावस्था में उनका बलात्कार किया गया था जिसके बाद उनका गर्भपात हो गया। कोर्ट के बाहर दर्जनों समर्थकों ने प्रदर्शन किया और कानून में बदलाव की मांग की। कोर्ट के बाहर मौजूद इवलिन हर्नांडेस ने मीडिया से कहा, मैं निर्दोष हूँ, मैं उस वक्त पढ़ रही थी और एक आदमी ने मेरा बलात्कार किया। मैं सिर्फ न्याय की मांग कर रही हूँ, मुझे पता है कि सब ठीक हो जाएगा, मुझे भगवान और अपने वकील पर भरोसा है। ये थे इवलिन हर्नांडेस के शब्द। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख फेडरिका मोगेरिनी ने कहा है कि ईरान ने परमाणु समझौते का कोई बहुत बड़ा उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने ईरान से अपील की कि वो यूरेनियम संवर्धन उत्पादन सीमित कर समझौते को दोबारा पालन करना शुरू करे। मोगेरिनी ने कहा कि यू ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जिससे समझौता टूट जाए, लेकिन इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने यूरोपीय संघ के रवैये की आलोचना की। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। डेमोक्रेटिक महिला सांसदों को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कथित नस्लवादी टिप्पणियों का मामला थमता नहीं दिख रहा है। ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन महिलाओं को अमेरिका विरोधी बताया है। ट्रंप ने कहा कि अगर वो यहां खुश नहीं हैं तो उन्हें अपने देश चले जाना चाहिए। इसके बाद चारों महिला सांसदों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ट्रंप के बयानों को खारिज कर दिया है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने भी ट्रंप के बयानों की निंदा की है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए गुरप्रीत सैनी से।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चार डेमोक्रेटिक महिला सांसदों पर नस्लवादी टिप्पणी का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि उन्होंने इन महिलाओं को अमेरिका विरोधी बताते हुए विवाद को और तूल दे दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इन महिलाओं को अमेरिका के दुश्मनों से प्यार है और अगर वो खुश नहीं है तो उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा,
And that's what I say all the time.
मुझे लगता है कि अगर आप हमारे देश से नफरत करती हैं तो आप जा सकती हैं। मैं हमेशा यही कहता हूं। मैंने ट्वीट में यही कहा। कुछ लोगों को ये विवादित लगता है, कई लोगों को ये सही लगा। अगर आप हमेशा शिकायत ही करती हैं तो यहां से जाएं। ये थे ट्रंप के शब्द। रविवार को जातीय रूप से विविध पृष्ठभूमि की महिलाओं को ट्रंप ने वापस लौट जाने के लिए कहा था। इसके बाद उन पर नस्लवाद और दूसरे देशों के लोगों के प्रति पक्षपाती और नफरत का रवैया रखने के आरोप लगे, जिन्हें ट्रंप ने खारिज कर दिया। ट्रंप के निशाने पर जो महिलाएं थीं उनमें अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कोर्टेज, रशीदा तलीब, अयाना प्रेस्ली और इल्हान ओमार शामिल हैं। अलेक्जेंड्रिया, रशीदा और प्रेस्ली का जन्म अमेरिका में ही हुआ था, जबकि इल्हान ओमार 12 साल की उम्र में शरणार्थी के तौर पर अमेरिका आई थीं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन महिलाओं ने ट्रंप की टिप्पणियों को खारिज किया और इसे ध्यान भटकाने वाला बताया और कहा कि ध्यान नीति पर होना चाहिए, न कि राष्ट्रपति के शब्दों पर। तलीबा और ओमार ने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाए जाने की मांग की। इल्हान ओमार ने कहा,
दिस इज द एजेंडा ऑफ व्हाइट नेशनलिस्ट, व्हेदर इट इज हैपनिंग इन चैट रूम्स।
ये श्वेत राष्ट्रवादी का एजेंडा है, ये घरों में हो रहा है, राष्ट्रीय टीवी पर हो रहा है और अब ये व्हाइट हाउस में भी पहुंच गया है। वो हमारे देश को नस्ल, धर्म, लिंग और प्रवासन के आधार पर बांटना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास सिर्फ यही रास्ता है जिससे वो हमें एक साथ मिलकर काम करने से रोक सकते हैं, ताकि हम स्वास्थ्य सेवाओं, जलवायु परिवर्तन जैसे जरूरी मुद्दों पर बात न कर सकें। ये थी इल्हान ओमार। शुरू में किए गए ट्वीट में ट्रंप ने किसी का नाम नहीं लिया था और ना ही किसी घटना का जिक्र किया था, लेकिन इस सप्ताहांत अमेरिका में दक्षिणी सीमा पर अप्रवासियों का मुद्दा खबरों में छाया रहा। शुक्रवार को ओकासियो कोर्टेज, रशीदा तलीब और अयाना प्रेस्ली ने सदन की समिति के सामने एक प्रवासी डिटेंशन सेंटर की स्थितियों के बारे में बताया था। ये तीनों इस सेंटर का दौरा करके आई थीं। उन्होंने अमेरिका के झंडे तले लोगों के साथ हो रहे गलत व्यवहार पर चिंता जाहिर की थी। राष्ट्रपति ने इसके जवाब में ट्वीट करके कहा था कि बच्चों के डिटेंशन सेंटर के बारे में बहुत अच्छे रिव्यू मिले हैं और जिन इलाकों में बड़ों को रखा गया है वहां अपराध का प्रतिशत बहुत ज्यादा है।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर नस्लवादी टिप्पणियों का आरोप, रिपोर्ट सुना रही थी गुरप्रीत सैनी। अमरीका के बाद रुख करते हैं नेपाल का, जहां भारी बारिश और भूस्खलन के कारण अब तक कम से कम 65 लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाली पुलिस का कहना है कि बारिश और भूस्खलन के कारण 30 लोग गायब हैं जबकि 38 लोग घायल हुए हैं। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं काठमांडू से बीबीसी संवाददाता सुरेंद्र फुयाल।
नेपाल में ये साल मानसूनी वर्षा देर शुरू हुआ, लेकिन कुछ दिन पहले से जब पानी बरसने लगे तो लोग चौंक गए। बाढ़ और भूस्खलन से वजह से 5 दिन में नेपाल के विभिन्न इलाकों में 65 से ज्यादा लोग का मौत हो चुका है, कई लोग घायल हैं और 30 लोग लापता है। बाढ़ और वर्षा की वजह से खाद्य सहायता आपूर्ति के लिए आवश्यक सड़क और राजमार्ग में विभिन्न खंड में क्षति हो गया है। 15 से लोग का उद्धार हो गया है। वर्षा के कारण उत्पन्न विपद के कारण 16,000 घर परिवार विस्थापित हो गए हैं। नेपाल का मौसम पूर्वानुमान महाशाखा का कहना है कि ये साता नेपाल में मासिक औसत से ज्यादा वर्षा हुई, जिसकी वजह से नेपाल के पहाड़ी इलाकों में नदी में आकस्मिक बाढ़ आ गया और जगह जगह पर भूस्खलन हुआ। राजधानी काठमांडू में कई सड़कों में भी बाढ़ आने की तस्वीर सोशल मीडिया पर दिखाई देने लगे और नेपाल सरकार का आलोचना हुआ। काठमांडू में अभी वर्षा नहीं है, मगर आसमान में बादल है। मौसम विभाग के मुताबिक भारत से जुड़ी हुई नेपाल के दक्षिणी भूभाग के ऊपर अभी भी मानसूनी ट्रॉफ सक्रिय है, इसलिए नेपाली अधिकारियों ने कोसी, कमला, बागमती, गंडक, राप्ती, कर्णाली और बवई नदी के आसपास के समुदाय को सावधान रहने के लिए सूचना जारी किया है। उन्होंने सड़क व हवाई यात्रा में जाने वाले यात्रियों को भी सावधान रहने के लिए अनुरोध किया है।
ये थे बीबीसी नेपाली सेवा के संवाददाता सुरेंद्र फोयाल, जो नेपाल में भारी बारिश से हुए नुकसान के बारे में बता रहे थे। नेपाल में भारी बारिश के कारण उत्तरी बिहार के अधिकतर इलाके इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। बिहार के सीमावर्ती इलाकों में कोसी, कमला, बागमती, गंडक, महानंदा समेत तमाम छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। सैकड़ों गांवों के लोग अपना घर बार छोड़कर ऊंची जगहों का रुख कर चुके हैं। क्या है इस पूरे इलाके के हालात, सुनिए उत्तरी बिहार के कोसी क्षेत्र से नीरज प्रियदर्शी की ये रिपोर्ट।
लहरों की ये आवाज तब की है जब तेज बहाव के साथ नेपाल से आ रहा पानी कोसी बैराज पास कर बिहार में प्रवेश कर रहा था। बैराज पर खड़े होकर जहां तक नजर जाती सैलाब ही सैलाब दिखता। सोमवार को कोसी बैराज के पास जलस्तर करीब 2 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले दिन के जलस्तर की तुलना में करीब 15,000 क्यूसेक ज्यादा था। लेकिन एक दिन पहले शनिवार को बैराज के पास कोसी का जलस्तर 3,89,000 क्यूसेक हो गया था। मजबूरन बैराज के सारे फाटक खोलने पड़े, जिससे उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सुपौल, अररिया, फारबिसगंज में कोसी के दोनों तरफ बने तटबंधों के किनारे के सैकड़ों गांव जलमग्न हैं। सुपौल के ढोली प्रखंड के लोग घर छोड़कर तटबंध वाली सड़क पर शरण लिए हुए हैं।
मेरा रवि नना है, मेरा रवि नना या पुना
से। इसी तरह कुछ लोग हमें बभनी के पास एक सरकारी स्कूल में भी शरण लिए हुए मिल गए। दोपहर के 2 बजने वाले थे, लेकिन सैकड़ों शरणार्थियों को खाना भी नसीब नहीं हुआ था। भूख से बच्चे तड़प रहे थे, लेकिन कोई उपाय नहीं था क्योंकि जलावन सारे गीले हो गए थे और पीड़ितों में से अधिकांश के पास गैस चूल्हा नहीं था।
घर कहाँ है? तटबंध के उस तरफ।
हाँ, हाँ, अच्छा।
कब से हैं आप लोग यहाँ पर? कल आए हैं आप लोग, जब पानी पूरा बढ़ गया था। तो आप लोगों के घरों में अभी भी उतना ही पानी है? अभी तक खाना नहीं बना? गैस चूल्हा नहीं है आप लोग?
बाढ़ प्रभावित इलाकों में कहने को तो राहत और बचाव कार्य अभियान शुरू है, मगर जमीन पर कहीं नहीं दिख रहा था। हमें ताज्जुब तो यह देखकर हुआ कि ऐसे में जब कोसी का पानी तटबंध को छू चुका है, मगर फिर भी प्रशासन द्वारा अभी तक तटबंधों की मरम्मती का ही काम चल रहा था। जबकि 3 मई को ही आपदा विभाग ने सर्कुलर जारी कर कह दिया था कि अगर ससमय बाढ़ से निपटने की तैयारियां कर ली गई तो बाढ़ से सक्षमता पूर्वक और प्रभावी ढंग से निपटा जा सकेगा। आखिर क्या है अब तक की तैयारियां? इसके लिए हमने बात की अररिया जिले के डीएम वैजनाथ प्रसाद से।
हमारे जिले के 5 नदियां हैं, पांचों नदियों में नेपाल में वर्षा होने से, अत्यधिक वर्षा होने के कारण जो है सो पानी हमारे पंचायत प्रभावित हुए हैं। अभी हम लोगों ने फोकस किया है हर एक पंचायतों में सामुदायिक रसोई कम्युनिटी किचन के माध्यम से लोगों को पका हुआ भोजन तो समय का हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने 36 जगहों पे राहत शिविर टाइप का भी किया, जहाँ पर लोग स्टे कर रहे हैं रात में, जैसे अररिया में भी आप देख सकते हैं हमारा आजाद अकेडमी स्कूल में है, प्लस यादव कॉलेज में है, अररिया कॉलेज में की है।
अभी
तटबंधों से होकर गुजर रहा था तो मैंने देखा कि अभी तटबंधों को मजबूत बनाने के लिए और अस्परों को मजबूत बनाने के लिए काम चल रहा है।
हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अभी जो पानी आया है और जो ब्रिजेज हो गए, जब तक पानी रिसीट नहीं करेगा
तब तक तो कुछ कर नहीं पाएंगे।
कुछ भी नहीं कर सकते
तो सर क्या उन तटबंधों की जो मरम्मति है, क्या उनका जो ये है वो पहले कर लिया गया है?
देखिए मैं बताता हूँ, हमारे जिले में तटबंध का बहुत बड़ा इशू नहीं है क्योंकि नदी जो हमारी है वो रिवर है। रिवर में जैसे कोसी नदी पर तटबंध वाली बात यहाँ नहीं है। जो नदियां हैं उसकी अपनी चौड़ाई है, उसकी जो बेसिन है, जो होता है, तो सडन पानी जब फ्लैश फ्लड होगा तटबंध उसमें की भूमिका बहुत ज्यादा नहीं होती।
हालांकि सोमवार की रात तक कोसी और दूसरी नदियों के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन बाढ़ का पानी जिन जगहों पर प्रवेश कर चुका है वहां के लोगों के लिए आने वाला समय भी बेहद कष्टकर होने वाला है। कोसी के तटबंधों से गुजरते हुए हमें केवल बाढ़ की त्रासदी और उसका हाहाकार ही नहीं दिख रहा था, बल्कि सिस्टम और सरकार की बेरुखी और लापरवाही भी दिख रही थी। नीरज प्रियदर्शी, BBC, फारबिसगंज।
नेपाल और बिहार के बाद रुख करते हैं पूर्वोत्तर भारत का, जहां के असम राज्य के 33 जिलों में से 30 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और वहां अब तक कम से कम इसकी वजह से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति त्रिपुरा में भी पैदा हुई है, लेकिन वहां हालात काबू में बताए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए मैंने गुवाहाटी में हमारे सहयोगी दिलीप कुमार शर्मा से बात की।
असम में जो पिछले 3 दिनों से जो है लगातार बाढ़ से जो हालात है वो बिगड़ते जा रहे हैं। सोमवार की शाम को जो असम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो प्रेस नोट जारी किया गया है उसके अनुसार अभी असम के कुल 33 जिलों में से 30 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिनमें 4,157 गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। और इस नोट में ये बिल्कुल साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आगे जो हालात है वो अभी इसलिए सुधरने के आसार नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक 9 नदियों का जो पानी है वो डेंजर लेवल से ऊपर बह रहा है। सोमवार को ही 4 और लोगों की मौत हो गई है। इस तरह से अब तक बाढ़ में मरने वालों की संख्या 14 से ज्यादा हो गई है। जहां तक काजीरंगा नेशनल पार्क का सवाल है तो अब काजीरंगा नेशनल पार्क भी करीब करीब 70% बाढ़ के पानी में डूब गया है। हालांकि अब तक सरकार की तरफ से किसी भी जानवर के मरने की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये बता दूं कि जो एक सींग वाला जो गैंडा है जो दुनिया में भी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में है और हर बार बाढ़ में यहाँ गैंडे की मौत होती है, लेकिन अब तक इस तरह की जानकारी नहीं मिली है। सरकार ने एक बयान जारी करके कहा है कि जानवरों को ऊंची पहाड़ी की तरफ जहां काजीरंगा के बिल्कुल पास कार्बी आंगलों का पहाड़ पड़ता है जो काजीरंगे से सटा हुआ है वहां ले जाने के लिए उनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग व्यवस्था कर रहे हैं।
जी दिलीप, हमें ये बताएं कि अभी जो है वो राज्य सरकार किस किस तरीके के कदम उठा रही है पूरे प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए।
देखिए मेरी जो आपदा प्रबंधन विभाग की जो आयुक्त सचिव है अरुणा राजौरिया, उनसे मेरी जो बात हुई है उन्होंने कहा है कि ये लगातार जो पिछले 3 दिनों में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बाढ़ से जो प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन वो कह रही है कि अभी भी NDRF, SDRF और उनका जो प्रशासन है और कई एजेंसियों के साथ मिलकर उससे निपट रहे हैं। अभी उन्होंने केंद्र सरकार से कोई भी अतिरिक्त मदद नहीं मांगी है बचाव कार्य के लिए। वो कह रही है कि अभी तक हम निपट रहे हैं, लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि असम में 33 जिले हैं और जिनमें 30 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, यानी स्थिति बहुत ही बिगड़ती जा रही है।
दिलीप, इसके अलावा कहा जा रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा जो राज्य है उसमें भी बाढ़ की स्थिति हो रही है खराब। ये बताएं कि पूर्वोत्तर भारत में और कहां कहां बाढ़, किन किन राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो रही है?
पिछले 2-3 दिनों में त्रिपुरा में भी बाढ़ की स्थिति बहुत ही खराब थी। करीब 10,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे, उनको शरणार्थी शिविर राहत शिविर में उनको आना पड़ा था। लेकिन सोमवार को जो त्रिपुरा आपदा प्रबंधन विभाग की जो जानकारी आई है उसमें कहा गया है कि वहाँ सोमवार को थोड़ी सी राहत मिली है। जो मुश्किल वाली बात है वो ये है कि असम सहित पूर्वोत्तर के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते जो अंदरूनी गांव है जहाँ पानी बहुत ज्यादा घुस गया वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में भी कई तरह की दिक्कतें आ रही है। लेकिन त्रिपुरा में सोमवार को जो रिपोर्ट आई है त्रिपुरा में थोड़ी सी बाढ़ की स्थिति में सुधार की बात कही जा रही है।
असम में 30 जिले बाढ़ से प्रभावित, अधिक जानकारी दे रहे थे दिलीप कुमार शर्मा।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
कर्नाटक में मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी की सरकार रहेगी या जाएगी, ये आज तय होना मुमकिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज फिर बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है। वहीं कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार गुरुवार को कर्नाटक विधानसभा में विश्वास मत पेश कर सकती है। पूरे मामले को समझने के लिए मैंने बेंगलुरु में स्थानीय पत्रकार इमरान कुरैशी से बात की।
जी, आज सुप्रीम कोर्ट बागी विधायकों के याचिका पर कुछ अहम निर्णय करने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें हर एक की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय पर होगी कि क्या स्पीकर बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की इजाजत देती है या नहीं, और क्या इस्तीफे स्वीकार करने के लिए इजाजत देती है या नहीं।
जी, अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि इस्तीफे स्वीकार कर लें स्पीकर, तो उस सूरत में क्या एचडी कुमार स्वामी की सरकार बच सकती है?
अगर स्पीकर उनके इस्तीफे स्वीकार करते हैं तो सरकार गिर भी जा सकती है, क्योंकि 224 सदस्यों वाली विधानसभा में अगर 15 विधायक इस्तीफा देते हैं तो विधानसभा की सदस्यता का नंबर 209 पर रुकता है, और इसमें बीजेपी के पास 107 हैं। मतलब ये कि गठबंधन सरकार बहुमत खो दी है। अगर स्पीकर बागी विधायकों को अयोग्य ठहराते हैं तो कुमार स्वामी की सरकार।
ये बताएं इमरान साहब, आप हमें कि किस तरीके से कोशिशें कर रही है कांग्रेस अपनी सरकार बचाने के लिए, क्या वो अभी भी बागी विधायकों के संपर्क में है?
जी, जो मुंबई में बागी विधायक हैं उनके साथ कुछ संपर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि वो विधायक सीधे बोल दिए हैं कि आप यहाँ मत आइए, हम आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, वो स्पष्ट कर दिए हैं। मगर जो बेंगलुरु में जो विधायक हैं, जैसे कि रामलिंगा रेड्डी है, जो एक बहुत ही प्रमुख नेता है और पूर्व गृह मंत्री भी हुए थे सिद्धरामैया सरकार में, वो आज स्पीकर के सामने पेश होंगे ये कहने के लिए कि क्या वो निजी कारणों के लिए इस्तीफा दिए हैं, क्या वजह क्या है, और किसी के दबाव में आकर दिए हैं क्या नहीं दिए हैं। तो कहा जा रहा है अगर वो अपना इस्तीफा वापस लेते हैं तो शायद जो मुंबई में एक दो बेंगलुरु के जो विधायक हैं वो शायद उनकी बात मानकर वापस कांग्रेस के साथ आ सकते हैं।
ये बताएं कि बीजेपी इस वक्त क्या कर रही है, क्या उसकी नजर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है?
बाकायदा है, क्योंकि बीजेपी की उम्मीद ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट स्पीकर को आदेश दी कि वो इस्तीफे स्वीकार कर लें तो फिर बीजेपी बहुत खुश हो जाएगी। अभी हालत ऐसी है कि वो अपने ही विधायकों को एक रिसोर्ट में रखे हैं, क्योंकि उनको डर है कि मुख्यमंत्री कुमार स्वामी उनके विधायकों को वहां से निकालने की कोशिश करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों की याचिका पर आज फिर सुनवाई। अधिक जानकारी दे रहे थे इमरान कुरैशी। और अब वक्त है दिल्ली से छपने वाले अखबारों के बारे में जान लेने का। अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरप्रीत सैनी। जी गुरप्रीत, बताएं।
जी, जैसे कि अभी हमने खबर सुनी कि जो बागी विधायक है उनकी याचिका पर आज सुनवाई होगी, और इसी के साथ 18 जुलाई को कुमारस्वामी की ओर से लाए गए विश्वास मत के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए जो कर्नाटक की पार्टियां हैं उन्होंने अपने एमएलए जो हैं, अपने विधायक हैं, उन्हें छुपा दिया है। ये जो हेडलाइन है ये इंडियन एक्सप्रेस में लगी हुई है, और इसमें ये भी बताया गया है कि एचडी कुमारस्वामी जब कल असेंबली में अपनी साइड के विधायकों की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे उनके पार्टी के विधायक बैठे हुए हैं, राजा वेंकटप्पा नायक। तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम कल कहाँ थे, और उन्होंने कहा कि मुझे तो लगा कि तुम लापता हो और तुमने जो बागी विधायक है उनका खेमा ज्वाइन कर लिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं आपके ही साथ हूँ। तो ऐसी खबरें हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर है, जनसत्ता अखबार में ये खबर है कि जो बागी विधायक है जो मुंबई में है वो अनुपस्थित रह सकते हैं विश्वास मत के प्रस्ताव की चर्चा के दौरान।
इसके अलावा गुरप्रीत, हम देख रहे हैं कि एक खबर जो है वो हर किसी अखबार के पहले पन्ने पर है, और वो है एनआईए को लेकर, जो एनआईए को एनआईए के विधेयक को लेकर, संशोधन विधेयक को लेकर जो कल बहस हुई है संसद में, उसको लेकर बहुत अखबारों ने अपनी हेडिंग बनाया है। जैसे हिंदुस्तान हेडिंग लगाता है एनआईए विदेश तक जांच करेगी, क्योंकि इसमें एक प्रावधान हो गया है कि अगर बाहर कोई चरमपंथी हमला किसी भारतीय पर होता है तो उस दौरान एनआईए जांच कर सकता है इस मामले की। तो इसमें एक चीज और देखने को मिली कि कल गृह मंत्री अमित शाह और असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के सांसद हैं उनके बीच एक तीखी नोक झोंक होती हुई दिखी। तो दैनिक भास्कर ने बनाया है इसको कि अंगुली दिखाकर डराने की कोशिश ना करें ओवैसी, उधर अमित शाह कहते हैं डरा नहीं रहा हूं, डर तो आपके जहन में है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत सैनी अखबारों की समीक्षा के लिए। बढ़ते हैं आगे। फेसबुक पर इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी लिखने के आरोप में झारखंड से गिरफ्तार एक युवती को रांची की एक अदालत ने कल जमानत दे दी। अदालत ने उन्हें कहा कि वो कुरान की 5 प्रतियां खरीद कर पुस्तकालयों में दान करें, वरना उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। क्या है पूरा मामला, सुनिए रांची से रवि प्रकाश की ये रिपोर्ट।
रांची विमेंस कॉलेज की छात्रा ऋचा पटेल को तब शायद ही इसका एहसास रहा हो कि इस्लाम के खिलाफ फेसबुक पर किए गए विवादित पोस्ट के कारण उन्हें अपनी 3 रातें जेल में गुजारनी पड़ेंगी। अदालत ने उन्हें 4th दिन इस शर्त पर जमानत दे दी कि वे उनके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराने वाले अंजुमन इस्लामिया के प्रमुख मंसूर खलीफा और 4 पुस्तकालयों को कुरान की 1-1 प्रति भेंट करेंगी। उनके पिता प्रकाश पटेल ने बीबीसी को बताया कि वे जल्दी ही इस शर्त का पालन कर विवाद खत्म करना चाहती हैं। प्रकाश पटेल ने कहा,
जमानत में सर हमको आज बेल दिया गया है और उसके बाद मैंने जो दिया था एप्लीकेशन तो उनको भी बुलाया गया था, वो लोग जाकर के कहे कि हमसे गलत फहमी में ऐसा हो गया, मैं अपना केस को वापस लेता हूँ। और कंडीशन लगाया गया है कि 5 को कुरान खरीदना है और उसमें 1 कुरान अंजुमन कमेटी को मैंने दान करना है, वहाँ से रिसीविंग लेना है, और 4 कुरान को कोई लाइब्रेरी में मैंने जाके दे देना है और पुलिस प्रोटेक्शन के बीच में मैंने देना करना है, ये हमसे बोला गया था।
सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह के इस फैसले की सराहना की है। इनका मानना है कि ऐसे फैसले समाज में पनप रही घृणा को कम करने में सहायक साबित होंगे। चर्चित एक्टिविस्ट नदीम ने बीबीसी से कहा,
ये अनोखा फैसला है, हमको लगता है हिंदुस्तान में फर्स्ट टाइम इस तरह का कोई दिया होगा। जो लोग तैयार करने वाले हैं उन लोगों के लिए और जो घृणा फैलाने वाले लोग हैं या जो लिख रहे हैं जाने अनजाने, उन पर भी असर पड़ेगा। लेकिन सवाल खाली उसी पर नहीं है, उस पर भी है कि जो सत्ताधीन लोग हैं या सत्ताधारी पार्टी है वो जिस तरह की घृणा फैलाते हैं या उसमें संलिप्त पाए जाते हैं या उस तरह का लोग जो है कहीं ना कहीं इनसे लिंके पाया जाता है, उसके लिए क्या होगा।
दरअसल रांची विमेंस कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई कर रहे ऋचा पटेल के फेसबुक पेज पर इस्लाम और मॉबलिंचिंग को लेकर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किए गए थे। अंजुमन इस्लामिया से जुड़े मंसूर खलीफा ने विगत 12 जुलाई को इसकी शिकायत रांची जिले के पिठोरिया थाने में की थी। इसके बाद पुलिस ने ऋचा पटेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस गिरफ्तारी के खिलाफ विभिन्न हिंदू संगठनों ने पहले पिठोरिया थाना और फिर रांची में प्रदर्शन कर ऋचा की रिहाई की मांग की थी। अदालत से जमानत मिलने के बाद ऋचा पटेल अब अपने घर आ चुकी हैं। सोमवार की शाम उन्हें रिहा कर दिया गया। संभव है कि आने वाले दिनों में लोग इस प्रकरण को भूल भी जाएं, लेकिन अदालत का यह फैसला लोगों के जहन में सालों तक बना रहेगा, क्योंकि इससे भारत की गंगा जमनी तहजीब का प्रदर्शन होता है। रवि प्रकाश, बीबीसी रांची।
और अब समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। कुश्ती के अखाड़े में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने यासर डोगो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में रूस की पहलवान एकेतरीन को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। विनेश फोगाट ने पिछले हफ्ते ही स्पेन ग्रांप्री में भी गोल्ड मेडल जीता था। विनेश के अलावा भारत के दीपक पुनिया को सिल्वर और सुमित को ब्रॉन्ज मेडल मिला। कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट विनेश ने रूस की एकेतरीना को 9-5 से हराया। वहीं दीपक को 86 किलो कैटेगरी के फाइनल में अजरबैजान के गोस्तीएव से 2-7 से हारकर सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। 125 किलोग्राम कैटेगरी में सुमित ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो वहीं अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडिया में फुटबॉल का मुकाबला चल रहा है, जहां पर इंटर कॉन्टिनेंटल कप खेलने के लिए भारत, तजाकिस्तान, सीरिया और नॉर्थ कोरिया की फुटबॉल टीम एकत्रित हुई है। ये मुकाबला 7 जुलाई से शुरू हुआ है और आज मुकाबला है भारत और सीरिया का। भारतीय समय के अनुसार ये मुकाबला 8 बजे खेला जाएगा। आपको बता दें, अभी तक भारत का प्रदर्शन इंटर कॉन्टिनेंटल कप में संतोषजनक नहीं रहा है। भारत ने तजाकिस्तान के साथ हुए मुकाबले में 2-4 से मुकाबला हारा था, तो वहीं नॉर्थ कोरिया के खिलाफ भी हारी।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर गुरप्रीत सैनी से।
बीबीसी समाचार। 4 डेमोक्रेटिक महिला सांसद जिन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश वापस लौट जाने के लिए कहा था, उन्होंने ट्रंप की टिप्पणी को नाकाम नीतियों से ध्यान भटकाने की नस्लवादी कोशिश बताया है। अमेरिका ने कहा है कि सेंट्रल अमरीकी प्रवासियों को अमरीका के बजाय मैक्सिको या रास्ते में पड़ने वाले किसी दूसरे सुरक्षित देश में शरण मांगनी चाहिए, लेकिन मैक्सिको ने अमरीका की इस घोषणा को खारिज कर दिया है। अल सल्वाडोर की एक महिला पर देश के सख्त गर्भपात विरोधी कानूनों के तहत हत्या का मुकदमा फिर चलाया जा रहा है। 2 साल पहले इवलिन हर्नांडेस को 30 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन दिसंबर में एक अपील के बाद उन्हें अस्थायी तौर पर रिहा कर दिया गया था। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख फेडरिका मोगेरिनी ने कहा है कि ईरान ने परमाणु समझौते का कोई बहुत बड़ा उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने ईरान से अपील की कि वो यूरेनियम संवर्धन उत्पाद सीमित करे और समझौते पर दोबारा पालन करना शुरू करे। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यमन में जारी युद्ध के दोनों पक्षों ने पिछले साल के युद्ध विराम को प्रभावी करने के लिए नए उपाय पर सहमति दी है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक ताज़ा खबरों के लिए आए हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com पर। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दे अनुमति। नमस्कार।